بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصر کا انقلاب اور سیاسی بحران۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، مصر میں حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اخوان المسلمین، جس کا انقلابی تحریک میں بنیادی کردار رہا ہے، دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے۔ اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شدید تر ہو چکا ہے۔ جیلیں اخوان المسلمین کے کارکنوں سے بھرتی جا رہی ہیں۔ مصر کی عبوری حکومت کے وزیر داخلہ نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ چونکہ اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے اس کے تمام رہنماؤں کو، چاہے وہ خواتین ہی کیوں نہ ہوں، سزائے موت دی جائے گی۔ مصر کی وزارت داخلہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اخوان المسلمین کی اپیل پر ہونے والے مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کو 5 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اگرچہ انقلاب آنے اور اسلامی قوتوں کو حکومت قائم ہونے کے بعد صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین سے کچھ غلطیاں ہوئیں، جن میں شاید اہم ترین غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مخلص دوستوں جیسے ایران سے دوری اختیار کی اور سعودی حکومت اور امریکہ سے وابستہ دوسری حکومتوں کو اپنا دوست سمجھا۔ لیکن بہرحال موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے اور حالات کو ماضی کی نہج پر واپس لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصر کے انقلاب کا اتنی جلدی سبوتاج ہو جانا واقعی ایک المیہ ہے۔ ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے دور کے افراد اب سامنے آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایک نمائشی الیکشن کے ذریعے پھر ماضی کا ہی آمرانہ دور واپس لایا جائے۔ مصر میں تقریباً 30 سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں نے متحد ہو کے ایک قومی محاذ تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس نے عوام سے فوج اور پولیس اور حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے اور آئین کے مسودے پر ہونے والے ریفرنڈم میں بھرپور شرکت کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے معزول صدر مرسی کے خلاف چلائے جانے والی تحریک تمرد کہ جس کے نتیجے میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹا، مرسی کو جیل بھیجا اور عبوری حکومت قائم کی، اس کے رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ اگر جنرل السیسی آئندہ صدارتی الیکشن میں امیدوار بنتے ہیں تو ان کی حمایت کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم موجودہ عبوری حکومت کے اقدامات کے محرکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے نتائج اور اثرات پر بھی گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ہم انقلاب مصر کے اتنی جلدی سبوتاج ہو جانے کے اسباب پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر میں اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد سے فوج اور عبوری حکومت ملک بھر میں اخوان المسلمین کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف تنظیم کے حامیوں نے پورے ملک کو سراپا احتجاج میں بدل دیا ہے۔ ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 5 ہے۔ زخمیوں کی تعداد 300 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دارالحکومت قاہرہ سمیت متعدد شہروں میں اخوان المسلمین کے حامی طلبا نے الازہر اور دیگر یونیورسٹیوں میں مظاہرے کیے اور دیگر طلبا کو امتحانات میں شرکت سے روک دیا۔ جامعۃ الازہر کی 2 فیکلٹیاں نظر آتش کر دی گئیں، جبکہ 2 فیکلٹیوں کو طلبا نے بند کروا دیا۔ ادھر مصر میں اخوان المسلمین کی قیادت میں اپوزیشن نے فوجی کودتا کے خلاف 7 دنوں کے مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ یہ اپیل فوج کی جانب سے قائم عبوری حکومت کے اس فیصلے کے بعد کی گئی، جس میں اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ مصر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوراً اپنا یہ فیصلہ واپس لے لینا چاہیے۔ مصر سے ملنے والی خبروں کے مطابق اخوان المسلمین کے حامی طلبہ اور پولیس کے درمیان قاہرہ سمیت متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے حامی سینکڑوں طلبہ نے سنیچر کی صبح الازہر یونیورسٹی کے اطراف کی شاہراہوں پر مظاہرے کیے اور فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف نعرے لگائے۔ مشتعل طلبہ نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مصری پولیس سے احتجاجی طلبہ کا تعاقب کرتے ہوئے الازہر یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہو گئی اور کئی مقامات پر ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ دوسری جانب مصر میں فوجی بغاوت کے خلاف قائم اتحاد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آئین پر ریفرینڈم کا بائیکاٹ کرے۔ رپورٹ کے مطابق فوجی بغاوت کے خلاف قائم اتحاد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے حامی آئینی ریفرینڈم کے خلاف ہفتہ غضب منائیں گے جو انقلابی تحریک میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے جھڑپوں اور بدامنی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد سے ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ مصر میں جو حکومت ہے وہ ملک کی ایک بڑی آبادی اور اسلام پسندوں کی نظر میں بغاوت کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ اس وقت مصر کی عبوری حکومت مخالفین کے ساتھ دشمنی کی علمبردار بن چکی ہے اور اس سلسلے میں اسے فوج کا تعاون بھی حاصل ہے۔ مصر کی فوج حکومت مخالف پارٹیوں خاص طور پر اسلام پسندوں کو سیاسی پلیٹ فارم سے باہر نکال دینا چاہتی ہے اور وہ سابق حکومت کے عناصر کے بارے میں لچکدار رویہ اپنا رہی ہے۔ مصر کی سیاست میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی واپسی کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پر مصری عوام کے انقلاب کے بعد پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور سابق حکومت کے بہت سے وزیر، فوجی اور کمانڈر بھی اس پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اور اب جبکہ اس ملک کی باگڈور ایک بار پھر فوج کے ہاتھوں میں آ گئی ہے تو حسنی مبارک سے وابستہ لوگوں کو پھر سے سیاسی پلیٹ فارم پر واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب اس ملک میں ایک سال تک حکومت کرنے والی تنظیم اخوان المسلمین کے گرد گھیرا سخت کیا جا رہا ہے۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد ارشد کو۔ لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شرکت کریں گے بر صغیر کے معروف دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر واسطی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار سی آر شمسی کو آج کے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد ارشد صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ محمد ارشد صاحب، السلام علیکم۔ جی جناب ارشد صاہب، اگر میری آواز آپ تک
پہنچ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔
جی، اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے محرکات اور عوامل آپ کی نظر میں کیا ہیں؟
دیکھیے، یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور جب جولائی میں یہ فوج آئی تھی اسی وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ جو حسنی مبارک اور ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں نئے لوگوں کے ذریعے جو ہے اس پورے عمل کو سبوتاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، اس اخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دینا، اس سے پہلے عدالت اس کو دہشت گرد قرار دے چکی تھی،
جی،
تو بس یہ عبوری حکومت نے اس کو جو ہے ایک طرح سے عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ اسلام پسندوں کو آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا جائے۔ حالانکہ اخوان المسلمون نے خود جو ہے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، مگر یہ کہ موجودہ حکومت کسی بھی طرح نہیں چاہتی کہ اسلام پسند یا اخوان المسلمون یا کچھ دوسری جماعتیں جو ہے جن پر کہ اسلام پسندی کا لیبل ہے وہ جو ہے سیاسی عمل میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے جو ہے انہوں نے اخوان المسلمون کو پر پابندی لگائی ہے، اسے دہشت گرد قرار دیا ہے، تاکہ اخوان المسلمون کے بہانے وہ ان لوگوں کو بھی جن کا کہ شاید کوئی دور سے تعلق ہو اخوان المسلمون سے، ان لوگوں کو سب کو جو ہے جیل کے پیچھے ڈال سکیں یا اور جو ہے ان کو سیاسی عمل سے دور رکھ سکیں۔ تو یہ پورا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے تاکہ جو ہے اخوان المسلمون کو آئندہ کے مصر میں کوئی جو ہے سیاسی عمل میں آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب موجود ہیں۔ واسطی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی واسطی صاحب، اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ مصر کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اخوان المسلمین کے لیڈروں کو سزائے موت دی جائے گی۔ کیا محرکات ہیں حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے، اور اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ جو مجھ سے پہلے تجزیہ کار انڈیا سے فرما رہے تھے، درست فرما رہے تھے، میں ان کا نام نہیں سن پایا، معذرت خواہ ہوں، لیکن ये बजाते ही एक फितना पैदा करने की कोशिश की गई है
जी
और इससे मिस्र के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। देखिए नाज़रीन को आपका इल्म होगा कि इख़वानुल मुस्लिमीन को जब हुकूमत मिली तो इख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत ने कोई अच्छे इकदामात नहीं किए और इख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत फ़ौज की ही मदद से जो है वो कामयाब हुए थे और फ़ौज ही की मदद से सादात वहाँ से गए और फ़ौज ही की मदद से हुस्नी मुबारक वहाँ से गए हुस्नी मुबारक वहाँ से गए। तो फ़ौज ने एक तरह से इस जमहूरी अमल को खुश आमदेद कहा और इनको आने दिया और मुर्सी को भी खुश आमदेद कहा और मुर्सी को उन्होंने हुकूमत में लाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे विद इन देयर कैपेसिटी वो किया। लेकिन उसके बाद अख़वानुल मुस्लिमीन से यकीनन ऐसे फैसले हुए, सबसे पहले तो ये फैसला कि उन्होंने इसको समझे बगैर कि फ़ौज का क्या किरदार रहा है मिस्र की हुकूमत में, फ़ौज को वहाँ से आइन से हर किस्म की अमलदारी से निकालने की कोशिश की गई। फिर सदर मुर्सी ने ऐसे इख्तियारात ले लिए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी मेरे किसी इकदाम को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो चैलेंज नहीं कर सकते। और 30 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो सड़कों पर बाहर आ गए, वही लोग जो जमहूरियत चाहते थे वही मुर्सी के खिलाफ इकट्ठे हुए और सदर मुर्सी ने बजाय इसके कि इस बात को समझें दोबारा इलेक्शन का ऐलान करें और जमहूरी रिवायत को अपनाएं, सिर्फ जमहूरियत को पसंद ना करें जमहूरी रिवायत को अपनाएं और इलेक्शन का ऐलान करें, उन्होंने उन पर जो है वो वायलेंस शुरू कर दिया जिसकी वजह से फ़ौज ने दोबारा मुदाखलत की और फ़ौज वहाँ पर आ गई। अब फ़ौज वहाँ पर आकर दोबारा वही गलतियाँ कर रही है जो सदर मुर्सी कर रहे थे। देखिए इख़वानुल मुस्लिमीन यकीनन वहाँ की एक सियासी क़ुव्वत है और सियासी क़ुव्वत से सियासी तरीके से ही निपटना चाहिए। जिस तरह से पहले फ़ौज का ख्याल था कि अगर हम इख़वानुल मुस्लिमीन को हुकूमत में आने देंगे तो आवाम पर इनका कच्चा छट्टा खुल जाएगा कि ये किस काबिल है, इनकी काबिलियत क्या है, दुनिया का हर इस्लामी तहरीक ईरान की इस्लामी तहरीक की तरह नहीं है, शायद उनके लीडरान के पास वो बसीरत नहीं है जो ईरान की इस्लामी तहरीक के लीडरान के पास वो बसीरत थी। यही हुआ कि जब सदर मुर्सी वहाँ पर आए जो इस्लाम के नाम पर वोट लेके आए थे, उन्होंने हमास के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाए और उन्होंने अलकायदा को अपने सफ़ों में पेनिट्रेट होने की इजाज़त दी, उन्होंने अपने लोगों को इजाज़त दी कि वो जाके मिस्र में तकफीरी ग्रुप के साथ इकट्ठे हो जाएं और मिस्र की जो और सीरिया की जो लेजिटिमेट हुकूमत है उसको गिराने में अगर वो जहाद जाके करना चाहते हैं तो वो करें। तो ये जो कच्चे छट्टे खुल रहे थे तो लोग इस बात से मायूस हो रहे थे कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिस जमहूरियत के लिए आवाम ने इतनी कुर्बानियां दी और जो है पुरानी डिक्टेटरशिप को हटाया। अब जब फौज वापस आ गई है तो फौज को भी मैं समझता हूं बजाय इसके कि सिर्फ इनको दहशतगर्द करा दिया जाए, इनको इलेक्शन में आने ना दिया जाए, फौज को चाहिए कि सियासी तौर पर इनसे डील करें और इनके दौरे हुकूमत में जो इनसे गलतियां हुई हैं वो लोगों को बताएं और आवाम को इस बात को हक दिया जाए कि आवाम इनको रिफ्यूज़ करें बजाय इसके कि इनको इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त ना दी जाए और इनके लीडरान को जो है वो कहा जाए कि हम सजाए मौत दे देंगे। इस वजह से दोबारा मेरा ख्याल है कि मिस्र में इंतहा पसंदी फैलेगी और ये दो लोग दोबारा एक ज़्यादा फोर्स के साथ उभरेंगे चूंकि हर हर मुल्क में एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी साइलेंट माइनॉरिटी होती है जो इस पार्टिसिपेट नहीं करती और ये जो एक्टिव माइनॉरिटी होती है ये ओवर पावर कर लेती है और मेजॉरिटी के हकूक पर गसब कर लेती है। तो मुझे खतरा है कि अगर ये जो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने सजाए मौत देने की कोशिश की और इस पाबंदी लगाई कि ये इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो ये आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा और वो कोई भी हुकूमत हो वो कामयाब नहीं हो सकेगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान के सीनियर तज़िया निगार सीआर शमसी साहब से हमारा राबता बरकरार हो गया। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी शमसी साहब, मिस्र के हालात आपके पेश नज़र हैं, इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द तंजीम करार दिया जा चुका है, इसी के साथ हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अब चूंकि इस तंजीम को दहशत गर्द करार दिया जा चुका है इसलिए इसके रहनुमाओं को सजाए मौत दी जाएगी चाहे वो ख्वातीन ही क्यों ना हो। इसके साथ ही हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की अपील पर जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें शिरकत करने वालों को भी 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी और हुकूमत ने ताज़ा ऐलान ये भी किया है कि दूसरे नामों से भी इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों को मिस्र में सरगर्म होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो मजमुई सूरत हाल है, हुकूमत ने जो फैसला किया है, ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहा है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो मिस्र में एक 31-32 साल की एक अमरियत थी, फर्द वाहिद की हुकूमत थी और लोगों में जो एक घुटन थी, उसके बाद जो एक तब्दीली आई थी और अख्वान अल मुस्लिमीन जिसके फ्रीडम जस्टिस पार्टी जिसकी जो एक उसकी शाख थी, उसने सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया था, तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तब्दीली थी और एक बड़ा मुस्बत शुरुआत थी कि जिनके बारे में इंतहा पसंदी का इल्जाम लगता था, उन्होंने जमहूरी रास्ता अख्तियार किया और उसके नतीजे में मिस्र के अवाम ने एक जमहूरी जायका भी चखा, लेकिन बदकिस्मती से वो जो जमहूरी अमल था वो संभाला नहीं जा सका, जिसके नतीजे में एक जो तवक्कात थी लोगों की, या वो अनासर जो जिनके लिए जमहूरियत अजनबी थी, उन्होंने ये जो मार्शल ला लगा या वहाँ फौजी हुकूमत आई है तो, और उसके खास तौर पे जो फौजी हुकूमत के जो इकदाम हालिया उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे एक नया इस्तराब पैदा होगा और मुल्क जो है वो ज्यादा बोरान की जानब जाएगा, क्योंकि इस बार जो सूरत हाल बनी है और जो आज नया कानून सामने आया है उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, ये एक मैं समझता हूँ कि इसमें जो साम्राज्य की या सुपर ताकतों की भी इसके पसे पर्दा बहुत सी हाथ कार फरमा है कि जो जमहूरी अमल है, जो अवाम का एहतजाज होता है, उसके जो मतालबात होते हैं, उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता, वो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन अब इसमें जिस तरह इसको एक नया रंग दिया गया है, अगरचे अगले बरस एक रेफरेंडम होने वाला है और जो नई फौजी सरबराह है वो एक नया आइन लाना चाहते हैं तरमीम शुदा, और उसमें भी लोगों का की आवाज, इजहार ख्याल, उनकी आवाज को दबाने की बात की गई है, लेकिन उससे पहले ही ये जो इकदाम उठाए गए हैं, एक अख्वानुल मुस्लिमीन को एक कलदम करार दिया गया है, उसके सरबराहों को फांसी देने की बात की जा रही है, उसकी हमायत में मुजाहरे करने वालों को भी सजा दी जा रही है, तो आप पूरे मिस्र को कैद नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इस वक्त जो मशरक वुस्ता है और उसकी जो सारी मजमूई सूरत हाल है वो इंतहाई पचीदा है, और इसमें जो अरब मशरक वुस्ता की सियासी लीडरशिप है उसको एक नवश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए और अपने मसाइल जो हैं या अपने मामलात जो हैं वो खुद बैठकर हल करने चाहिए, खास तौर पर मिस्र जो है एक बहुत अहम मुल्क है जिसका इजराइल के साथ माजी में एक बड़ा मायदा रहा है और जिसपे मिस्र को बहुत सी मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मिस्र के अवाम ने एक नई जो उनमें उमंग पैदा हुई है जमहूरियत की और एक अपने मसाइल खुद अपने हकूक की, उसको इन सख्तियों से, इस जबर से या मार्शलाई जाब्तों से कतन रोका नहीं जा सकता, और अगर इसमें शिद्दत आई और इसमें आज जिस तरह अलअज़हर यूनिवर्सिटी के तुलबा भी इस मैदान में कूद पड़े हैं, और इसमें याद रखना चाहिए कि जब सदर हसनी मुबारक के खिलाफ एहतजाज की लहर उठी थी तो इस तुलबा ने ही बहुत अहम किरदार अदा किया था, और अब भी मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में, दिनों में तुलबा का जो एहतजाज है, एक तुलबा, एक तालिब इल्म हलाक भी कर दिया गया है, तो उसके नतीजे में एक बड़ी नफरत की एक लहर जो है पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है, और इस पे जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपने जो इकदाम हैं उन पर नजर सानी करना होगी, वगरना मिस्र में एक नया जो इज़्तिराब है वो एक लावा फट सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। अरशद साहब, ये सारे जितने भी इकदाम हुकूमत ने हालिया दिनों में किए हैं कि अख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, उनके रहनुमाओं के लिए सज़ाए मौत का ऐलान किया कि उन्हें सज़ाए मौत दी जाएगी, उनकी अपील पर होने वाले मुजाहिरों को रोकने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि इन मुजाहिरों में जो भी शिरकत करेगा उसे 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी, मेरा जाहिर है कि ये सारे इकदाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वो किसी भी तरह से इख्वानुल मुस्लिमीन को मुल्क की सियासत के मैदान से निकालना चाहती है, अपने मकसद में वो कामयाब हो पाएगी?
देखिए, ये तो आने वाले हालात बताएंगे कि जो है मौजूदा हुकूमत कामयाब हुई या नहीं हुई, मगर ये कि इस सिलसिले में हमें थोड़ा सा जो है पीछे जाना चाहिए कि मशरक़ वस्ता में मिस्र हो, ईरान हो, तुर्की हो, ये तीन ऐसे ममालिक हैं कि यहाँ पे अगर कोई तब्दीली आती है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा चेंज आता है जिससे कि वहाँ की आवाम जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो जो है आगे बढ़ते हैं, वो तरक्की करते हैं, तो उसका असर न सिर्फ ये कि मशरक़ वस्ता पे पड़ेगा बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया पे पड़ता है। तो जो इस वक्त आलमी ताकतें हैं या जो कि दुनिया के मसाइल को जो है अपने अंदाज से हल करना चाहती हैं, वो शायद ये नहीं चाहती कि इन मुल्कों में कोई ऐसी तब्दीली आए जो कि उनके मफादात के ख़िलाफ़ हो। ईरान में वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं, तुर्की में भी जो है उन्हें किसी कदर जो है मुखालफतों का सामना करना पड़ा है, मगर ये कि मिस्र में अगर इसी तरह की तब्दीली आ जाती है, इख्वान आ जाते हैं या जो है दूसरे जमहूरी ताकतें आ जाती हैं, तो शायद जो है मशरक़ वस्ता में उनके मफादात जो है बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होंगे। इसराइल के साथ जो है जो अमेरिका का और जो दूसरी मगरबी ताकतें हैं जो ताल्लुक़ है, जिस तरह वो इसराइल की सरपरस्ती करती हैं, उनको अगर हम सामने रखें तो मिस्र में अगर जमहूरी तब्दीली आती है या कोई ऐसी तब्दीली आती है जो कि इसराइल को सूट नहीं करती है, तो उससे जो है जाहिर सी बात है कि वो ताकतें खुश नहीं होंगी, न उससे जो है वो मुतमईन होंगी। इसलिए वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती कि मिस्र में कोई ऐसी तब्दीली आए जिसके असरात जो है दूसरी जगह भी पड़ें। इसीलिए जो है वो पूरे जमहूरी अमल को ही, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमों को ही नहीं, दूसरी जमहूरी ताकतों को भी, उन लोगों ने को जो कि कुछ दिनों पहले तक उनके साथ थे, उनको भी वो नहीं चाहते कि वो इक्तदार में आएँ, क्योंकि इसकी वजह से जो है जो तब्दीली आएगी वो जाहिर सी बात है कि एक इंतखाब के ज़रिए आएंगे, तो शायद उन्हें मिस्र के आवाम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, इलाके की राय अम्मा को सामने रख कर के फैसले करने होंगे, जबकि फौजी टोला जो होता है वो हमेशा जो है अपने कुछ ख़ास मफादात रखता है, उसके बाद जो है उसे आसानी के साथ हैंडल किया जा सकता है। तो शायद जो है आने वाले दिनों में जो फौज का वहाँ पे अभी जो फौजी क़यादत है वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बरकरार रखना चाहेगी। ये अब देखना है कि मिस्री अवाम के किस तरह इस पे रिएक्ट करते हैं, क्या वो फिर 2011 वाली पोजीशन में जाना चाहते हैं, क्या फिर वो इसके एक नई तब्दीली के लिए आगे निकल आएंगे, या वो जो है फौज को अपनी बात आगे, अपने काम को आगे बढ़ाने देंगे।
बहुत तो बहुत शुक्रिया।
शायद जो है जो कुछ मिस्र के अवाम पे डिपेंड करेगा कि ये आगे कहाँ तक बात बढ़े, क्या वहाँ पे इंतखाबात हों, क्या वहाँ पे जो है लोग वहाँ पे जाएं लोग, ये जो है देखने की बात है वहाँ पे।
बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। वास्ते साहब, मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशत गर्द करार दिए जाने के बाद दिलचस्प बात यह है कि एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात ने फौज के लाए हुए मौजूदा हुकूमती सेटअप को मज़ीद $9 अरब की इमदाद देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात का मिस्र में इंटरेस्ट क्या है कि जैसे ही फौज ने वहाँ बगावत की, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, मुर्सी साहब को कैद करके जेल भेजा और हुकूमत और इख्तदार अपने हाथ में ले लिया, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात ने $12 अरब की इमदाद उनको फौरी तौर पर दी और अब $9 अरब की मज़ीद इमदाद देने का ऐलान किया है। उनका इसमें मिस्र में इंटरेस्ट क्या है, मफाद क्या है कि वो दामे दिरमे हर तरह से मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है, जो फौज लाई है, उसकी मदद के लिए तैयार है, जबकि सारी दुनिया इस हुकूमत के इकदाम की मुखालफत कर रही है।
मैं समझता हूं कि हम जैसे कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा कहते रहे हैं और आगाही के इस अमल में शरीक होते रहे हैं कि हर उस इस्लामी मुल्क में जहां पर जमहूरी अमल को सेबोटाज किया जाएगा और जहां पर डिक्टेटरशिप कायम होगी, सऊदी अरब मुसलमान ममालिक में वो पहला मुल्क होगा और कतर और कुवैत इस कतार में शामिल होंगे जो उस डिक्टेटरशिप की हिमायत करेंगे और उस जमहूरी अमल को ख़राब करेंगे और जमहूरियत को वहाँ पे कायम नहीं होने देंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो ममालिक हैं जो ख़ुद एक शदीद किस्म की डिक्टेटरशिप कायम रखे हुए हैं, एक हुकूमतें हैं जो शदीद किस्म की डिक्टेटरशिप कायम रखे हुए हैं अपने अपने ममालिक में। ये कतन ऐसा नहीं चाहती कि अफ्रीका में, अरब में ख़ास तौर पर, मिडल ईस्ट में या किसी भी मुस्लिम मुल्क में जमहूरियत पनपे और जमहूरियत परवान चढ़े, क्योंकि अगर मुसलमानों में जमहूरियत कामयाब होगी तो बादशाहत ख़त्म होगी और बादशाहत का ख़त्म होना एक बात यह है कि इनको किसी सूरत कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब की हकूमत, कतर, कुवैत और बहरीन की हकूमत, ये तमाम हकूमतें बजात ही खुद अमेरिका और इसराइल की, जो अमेरिका की खुली और इसराइल की खुफिया मदद की वजह से अपने अपने मुल्कों पर हुकूमत कर रही हैं। अब इसराइल और अमेरिका का मफाद भी इसी तरह से है कि वो इन ममालिक में, मिडल ईस्ट में और मिस्र में, जैसा कि अभी फरमा रहे थे अमजद साहब इंडिया से, कि चूंकि उनका इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में जो वॉच कर सकते हैं, जो उनके इंटरेस्ट को कायम रख सकते हैं, वो ममालिक यही हैं, सऊदी अरब, मिस्र उसमें नंबर सफ़े अव्वल में है, कि अगर मिस्र में वो जमहूरियत कायम होने देते हैं इख़वान अल-मुस्लिमीन से, जो शायद कुछ गलत फैसले भी हुए हों, लेकिन अगर इख़वान अल-मुस्लिमीन एक दफ़ा आती है, दूसरी मरतबा फिर जमहूरी हुकूमत आती है, तीसरी मरतबा फिर जमहूरी हुकूमत आती है, तो एक तो ये कि इन ममालिक में खुद जो अवाम है वो खड़े होंगे और वो कहेंगे कि जनाब अगर हमारे हमसाया मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में जमहूरी हुकूमत आ सकती है तो हमें क्या मुसीबत है कि हम बादशाहत के नीचे जिंदा रहें और हम इस बादशाहत को क्यों ना ख़त्म करें और जमहूरियत क्यों ना लेके आएं। दूसरी बात यह है कि ये ममालिक जो हैं, अवाम ये इस बात को समझती है कि उनके ऑयल पर, उनकी मसनूआत पर, उनकी सोच पर अमरीका हावी हो रहा है और वेस्ट हावी हो रहा है, कैपिटलिज्म हावी हो रहा है, तो वो उस सोच को, अमेरिका के उन मफादात को ज़द पहुंचने का इम्कान है जो मुसलमान अवाम कभी किसी तौर पर भी अपनी मर्जी से अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मिस्र में सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का, इन तमाम ममालिक का बुनियादी इंटरेस्ट ये है, एक बात ये कि इनके अपने एलाइज वहाँ पर कायम हों, इसराइल के खिलाफ जो है वहाँ पर लोग खड़े मत हों, और अगर कोई शख्स वहाँ पर फ़लस्तीनियों की मदद करने वाला है ऐसी आवाज़ को वहाँ पर दबाया जा सके, और इजिप्ट के थ्रू वो इस सीरिया में भी अपनी सरगर्मियों को चैनल कर सकें, इजिप्ट के थ्रू वो अगर चाहें तो टर्की में और ईरान में भी जो हैं वो अपनी सरगर्मियों को कायम रख सकें। तो मिस्र में ख़ास तौर पर ये इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक तो इनके लिए निगोसिएशंस करना आसान होता है किसी भी एक डिक्टेटरशिप से, बजाय इसके कि अवाम की हुकूमत से वो निगोशिएट करें। तो इनका बुनियादी मकसद ये है कि सीरिया में फसादात जो हो रहे हैं और इस हुकूमत के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस हुकूमत के ज़रिए वो उन जहादियों की और उन तकफीरियों की मदद की जाए, ईरान में अगर कोई फितना पैदा कर सकते हैं या हिजबुल्ला के खिलाफ अगर कोई फितना पैदा कर सकते हैं, हिजबुल्ला के खिलाफ अगर कोई काम कर सकते हैं लेबनान में, और फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर अगर कोई मजीद जद मारी जा सकती है और इसराइल को कहीं फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, तो वो तमाम चीज़ें वो एक डिक्टेटरशिप की हुकूमत से बआसानी करवा सकते हैं, बजाय इसके कि एक अवामी हुकूमत मिस्र में कायम हो जो कतन इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि बिरादर इस्लामी मुल्कों में फसाद पैदा करवाएं और इसराइल के खिलाफ ना खड़े हों और फलस्तीन के साथ ना खड़े हों।
बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जनाब आप लाइन पर हैं?
यार शमसी हूं।
जी जनाब, इख्वानुल मुस्लिमीन ने तो मिस्र में हुकूमत में आने के बाद सऊदी अरब से बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश की थी। मुर्सी साहब ने पहला दौरा भी सऊदी अरब का किया था, हत्ता सऊदी अरब की खुशनूदी हासिल करने के लिए उन्होंने मिस्र के इनकलाब और अवाम के मुखलिस तरफदारों जैसे ईरान को भी किसी हद तक नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की थी। फिर सऊदी अरब ने मिस्र की मुंतखब हुकूमत, सदर मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन की मुखालफत क्यों की?
जी आप मुझसे मुखातब हैं?
जी जनाब अरशद साहब से।
जी दीदी मैं सी आर शमसी हूँ।
हाँ शमसी साहब जी, सी आर शमसी साहब
जी जी जी, सी आर शमसी पाकिस्तान से। आपने जो अभी जो गुफ्तगू हुई और बड़ी अहम मैं समझता हूँ कि तारीख का पहिया या एक पीछे नहीं घुमाया जा सकता। जो कहानी शुरू हुई थी ट्यूनस से, जो जब एक नौजवान ने घुटन से तंग आकर और उस जबर से तंग आकर खुदकशी की थी अपने आप को आग लगाकर, और उस वक्त आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ के जैनुल आबिदीन बिन अली जो है वहाँ से फरार होने पर मजबूर हुए और फ्रांस ने उनको पनाह देने से इनकार की, लेकिन सऊदी अरब ने उसको पनाह दी थी। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये जो अभी तजिया किया है दूसरे मोहतरम में बिल्कुल बजा है कि इस वक्त मिस्र में एक आवाम की पसंद की जमहूरी हुकूमत ही मुल्क को इस्तेकाम दे सकती है, और जो फौजी हुकूमत के इकदामात हैं जो आज उन्होंने उठाए हैं उसका नतीजा मुस्बत कतन नहीं निकलेगा, बल्कि लोगों की जो ख्वाहिश है जमहूरियत की, आजादी की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, इजहार ख्याल की, वो ज्यादा शिद्दत से सामने आएगी और फौजी हुकूमत को अवाम के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और जहां तक सऊदी अरब, कुवैत, कतर का मामला है, ये मैं समझता हूं कि उनकी क्यादतों को नवश्ता दीवार पढ़ना चाहिए कि जो एक लहर उठती है आजादी की वो आस्था आस्था इन तमाम मशरक़ वुस्ता की जहां आमरियतें कायम हैं उनकी जड़ें और बुनियादें हला चुकी है।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। और अब चलते हैं दिल्ली, जहाँ डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद साहब, दोबारा आपकी खिदमत में मैंने सलाम अर्ज किया है। और इख्वानुल मुस्लिमीन ने मिस्र में बहुत तवील मुजाहदत की, उसके पास बहुत ही गहरी सियासी नज़र रखने वाले दानिश्वर मौजूद थे। अतराफ के मुल्कों में कायम सियासी निज़ाम हुकूमतों और अमरीका और सहूनी हुकूमत से उनकी वाबस्तगी इस तंजीम के रहनुमाओं से पोशीदा नहीं थी। फिर उसकी क़यादत से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जिसका खमियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को दोस्त समझ लिया।
जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इख्वानुल मुस्लिमीन की मौजूदा क़यादत जो है वो दूसरे दर्जे की क़यादत है, वो पहले दर्जे की क़यादत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इख्वानुल मुस्लिमीन जो है तकरीबन 40-50 साल से जो है एक तरह से ज़ेर ज़मीन है। उसके ज़्यादातर जो है रहनुमा वो या तो जिला वतन हैं या जो कैद में हैं। तो उसकी वजह से जो है इख्वानुल मुस्लिमीन में जो एक क़यादत उभरनी चाहिए थी जिस तरह की, शायद वो नहीं उभरी। दूसरे ये कि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों से गलती ज़रूर हुई है। उन लोगों ने जो है अपने दोस्तों को या अपने दुश्मनों को पहचानने में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी, या उसके लिए एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो सलफ़ी पार्टी थी जिसने के मिस्री इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी तवक्को से ज़्यादा आमतौर से, और जिसको कि सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों की बराह रास्त पुष्पनाही हासिल थी, उसने जो है भी जो इख्वानुल मुस्लिमीन की क़यादत थी उसके फ़ैसलों को कहीं ना कहीं मुतासिर किया था। इसलिए जो है उनका झुकाव शायद जो है अरब दुनिया की तरफ ज़्यादा था। हालांकि उनको ये समझना चाहिए था कि जो इस वक्त की अरब लीडरशिप है वो ज़ाहिर सी बात है कि या तो ख़ानदानी हुकूमतें हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं। वो जो है कभी भी अपने यहाँ जमहूरियत को पसंद नहीं करेंगी, और अगर जमहूरियत अरब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क मिस्र में आती है तो उसके असरात बाकी की अरब दुनिया पर भी ज़रूर पड़ेंगे। इसलिए जो है वो पहले से मुहतात थे। उन्होंने, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, कि कोई मदद मुर्सी हुकूमत की उस तरह नहीं की जैसी कि आज जो है वो एक फौजी डिक्टेटरशिप की कर रहे हैं। क्या जो है जिस तरह की मुर्सी हुकूमत को परेशानियां आई थी उसको बचाने के लिए, इक्तसादी बहरान या दूसरी चीज़ों से बचाने के लिए, वो उस तरह की मदद उसको भी कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। या इसी तरह वो जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते थे। उनकी जो जमात थी सल्फी जमात, उसने तो जो है फौजी डिक्टेटरशिप का साथ दिया, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं इख्वानुल मुस्लिमून की क़यादत को अपने दोस्तों और दुश्मनों को समझने में उनसे गलती हुई और उसका जो है खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वास्ते साहब। जनाब सऊदी अरब आज जो कुछ कर रहा है, या मुंतखब सदर मोहम्मद मुरसी को माजूल किए जाने के बाद उसने जिस तरह से वहाँ की फ़ौज की लाई हुई हुकूमत की मदद की और इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद फौरी तौर पर 9 अरब डॉलर की जो मज़ीद इमदाद का ऐलान किया, ये हैरत अंगेज़ नहीं है। हैरत तो इस बात पर है कि इख्वानुल मुस्लिमीन ने इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर दिया कि सऊदी हुकूमत के फ़लसफ़े वजूदी और ख़ानदानी हुकूमत के नज़रिए और इख्वानुल मुस्लिमीन के मंशूर में नुमाया तजाद और टकराव पाया जाता है। फिर उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि आले सऊद की ख़ानदानी आमरियत के कायल हुकूमत उनकी हामी व मददगार होगी?
खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए पहली बात तो ये है कि ख़ुद इख्वानुल मुस्लिमीन में इटसेल्फ कोई बहुत ज़्यादा जमहूरी अमल आपस में नहीं रहा एक लीडरशिप को चुनने का, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन बहरहाल जमहूरी अमल को कायम रखने में, जमहूरी अमल को यकीन में शामिल रही और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली एक जमात है जो इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में आना चाहती है। तो जैसा कि आप फरमा रहे हैं, न सिर्फ ये कि इनके मंशूर में और उस आमरियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और बहुत शदीद तजाद है, बल्कि इस अप्रोच में बजाते ही बनफसे ही एक तजाद मौजूद है कि एक ऐसी तंजीम है जो सियासत की मदद से अवाम के सामने वोट मांगकर हुकूमत में आना चाहती है और फिर वो अपने तर्ज के इस्लामी निज़ाम को वहाँ उस मुल्क पर कायम करना चाहती है और उसको इमदाद और ताल्लुक वो उससे बना रही है जो इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि सियासत जो है वो अवामी मसाइल का हल है या अवाम की ज़रूरत है या वो किसी मुल्क को आगे चलाने में कामयाब हो सकती है। तो ये तजाद जो है मेरा ख्याल है इसी बुनियादी सतह पर वाज़ह हो जाना चाहिए किसी भी जमहूरी हुकूमत को, चाहे वो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन हो, या चाहे वो फ़लस्तीन की हमास हो। कोई भी ऐसा जमहूरी पार्टी जो जमहूरियत के ज़रिए अवाम के सामने जाकर अवाम की ताकत पर हुकूमत में आना चाहती है, और अगर उस जमहूरी पार्टी के साथ सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन की हुकूमत अगर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तआवुन करते हैं, तो उन्हें ज़रूर अपनी सफ़ों में देखना चाहिए मुड़कर कि कौन सी उनके अंदर ऐसी बात है जो डिक्टेटरशिप को पसंद आ रही है, जो बादशाहत को पसंद आ रही है, जो शहनशाहियत को पसंद आ रही है, और जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि ये जो जमहूरियत के ज़रिए पार्टी हुकूमत में आएगी ये शायद उस शहनशाहियत बादशाहत के एजेंडे को और डिक्टेटरशिप के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी जो वो अपने मुल्क में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनका तजाद जो है वो बहुत बुनियादी सतह पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये सही फरमा रहे थे कि एक तो ये कि जो इस वक्त सदर मुरसी वहाँ पर आए और जो बहुत सारी इसकी पॉलिटिकल वजूहात हैं, हम अपने प्रोग्रामों में पुराने कहते रहे हैं कि क्यों सदर मुरसी को टिकट दी गई और क्यों सदर मुरसी को चुना गया, लेकिन सदर मुरसी खुद जो है वो दूसरे दर्जे के एक लीडर थे, बल्कि दूसरे दर्जे के भी लीडर नहीं थे, उनको भी शायद टिकट नहीं मिली थी, उनके भी मसाइल हो गए थे, तीसरे दर्जे के लीडर थे और उन्होंने शदीद बसीरत की कमी का मुजाहरा किया, हर बात में जल्दी की और वो तमाम इकदामात, अगर आपको याद हो उस ज़माने में इन्होंने फ़लस्तीनियों की उन सुरंगों में गटर के पानी खोल दिए, तो इनसे वो तमाम इकदामात हुए जो उस वक़्त की सऊदी हुकूमत बहुत खुश हुई उस ज़माने में कि शायद ये हमारे ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और इसराइल के साथ जो दोस्ती है और फ़लस्तीनियों के साथ जो दुश्मनी है और सीरिया की इस हुकूमत के साथ जो दुश्मनी है और ईरान के साथ जो दुश्मनी है, इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने उस वक़्त कुछ मामलात को ठीक करने की भी कोशिश की। लेकिन चूंकि ये बुनियादी तजाद इतना वाज़े था जिसको नज़रअंदाज करना ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ था, और वो ये था कि आप जमहूरियत चाहते हैं और वो मुल्क डिक्टेटरशिप चाहते हैं, तो जो ही उस जमहूरियत का कला कम्मा हुआ तो वो हुकूमतें जो हमेशा से डिक्टेटरशिप की हिमायत करती थी उन्होंने फौरन से डिक्टेटरशिप की हिमायत की और वो न सिर्फ हिमायत की बल्कि एक इंतकामी तरीके से जो है वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, और ये तमाम इंतकामी सियासत मैं कहने दें मुझे कि ये ईरान की इस वजह से हो रही है कि कहीं ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात बेहतर होने वाले हैं, इससे जो मिडल ईस्ट में तब्दीली आने वाली है, इससे जो मिडल ईस्ट में एक नई पावर बैलेंस जो है कायम होने वाला है, इसको हम किसी तरह से ख़राब कर सकें और अमेरिका के मफादात को और ईरान के मफादात की जो जो दोस्ती की जो बात चल रही है इसको किस तरह से जख्म पहुंचा सकें, और वो इन्फ्लुएंस जो ईरान को यहाँ पर अपनी सियासत की वजह से, जमहूरियत की वजह से, अपनी अवामी ताकत की वजह से और बसीरत की वजह से हासिल है, वो जाहिर है अगर अमेरिका से और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उसका दायरे अमल बढ़ेगा और बहरीन पर उसका असर पड़ेगा। मैं कहता समझता हूँ कि और जो मिडल ईस्ट में ममालिक हैं उस पर असर पड़ेगा, लेबनान पर असर पड़ेगा, तो उस असर को कम करने के लिए इस वक्त ये जो गल्फ की डिक्टेटरशिप है ये चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेटरशिप की हिमायत करें ताकि इससे हम ये काम ले सकें कि किस तरह से ईरान के असर नफूज को इस खत्ते में कम किया जा सके, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन है अगर सूरत हाल इस तरह से बढ़ती रही जिस तरह से ईरान इंशाल्लाह आगे तरक्की कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और इसी के साथ हम डॉक्टर मोहम्मद अरशद और पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सीआर शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तज़िया निगारों के ख्यालात आपने मुलाहिज़ा फरमाए। बहरहाल इख़वानुल मुस्लिमीन से कुछ गलतियां हुई थी जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जो साजिश खित्ते की बाज़ रजत पसंद हुकूमतें मिस्र के इनकलाब के ख़िलाफ़ कर रही हैं और जिस तरह से ख़ास तौर पर सऊदी हुकूमत आगे आगे है वहाँ की आमरियत के को मज़बूत करने के लिए, इसको कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिस्र के जो अंदरूनी हालात हैं, जिस तरह से वहाँ पर आवाम सड़कों पर हैं, ख़ास तौर पर तलबा की जमात जिस तरह से मुजाहरे कर रही है, उससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहाँ के जमहूरियत के अमल को और इनकलाब को सबोताज कर देना ये मिस्र के मौजूदा हुकूमती सेटअप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।